नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलानं च सव्येषिं पढमं हवै मंगलं पढमं हवै मंगलं।
या विकल हो जाएगी तो मैं जीव दया पालन में समर्थ नहीं होऊंगा। इस तरह से प्राण संयम और इंद्रिय संयम के पालन हेतु आहार ग्रहण करते हैं तथा मेरे ये दस विध प्राण आहार के बिना नहीं रह सकते हैं। विशेष रूप से आहार के बिना आयु प्राण नहीं रह सकता है, अतः प्राणों के लिए मुनि आहार करते हैं। भोजन के बिना उत्तम क्षमा आदि रूप दस प्रकार का धर्म मेरे वश में नहीं रह सकेगा। अशन के बिना यह जीव क्षमा माधव आदि धर्म करने में समर्थ नहीं हो सकता है, इसीलिए वे आहार करते हैं।
मुनि आहार इसलिए करते हैं कि दस धर्म टिकेंगे नहीं, आहार नहीं करेंगे तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जो ये सभी धर्म आत्मा के अधीन हैं और आत्मा शरीर के अधीन है और शरीर अन्न के अधीन है। इस प्रकार परंपरा से अन्न ही सबका रक्षक है, अन्न से शरीर की, शरीर से प्राणों की, प्राणों से आत्मा की, आत्मा से दश धर्म की, रत्नत्रय की रक्षा होती है। तो इसलिए मूल में शरीर को ही संभालना पड़ेगा। शरीर संभल गया तो सभी धर्म संभल गया, प्राण संभल गए, सब कुछ संभल गया। यही कहा धर्म आयु कर्म प्राण दश प्राण इनकी रक्षा करने के लिए मुनि महाराज आहार करते हैं, प्राणों की रक्षा के लिए। विषयादि के सुख के लिए भोजन नहीं करते और प्राणों की रक्षा करना है तो फिर एक बार भोजन करने पर भी प्राणों की रक्षा हो सकती है, इसलिए दो दो बार खाने की आवश्यकता नहीं, एक बार खाकर खाने पर भी प्राणों की रक्षा हो सकती है, इसलिए एक बार भोजन लेने का नियम भी है। एक भुक्त जो सात शेष गुणों में एक भुक्ति कहाँ है, मुनि महाराज एक टाइम ही भोजन करते, एक भुक्ति
एक टाइम खाना खाए तो
एक टाइम खाना खाएंगे तो दोबारा आवश्यक होता ही नहीं, एक बार में चलता है, प्राणों की रक्षा हो जाती है, आकुलता नहीं होती।
प्राण संयम और इंद्रिय संयम के पालन हेतु हार करते
हैं। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के रक्षा के लिए आहार करते हैं, ठीक। ये तो हो गई थी सर। आगे थोड़ा चलते हैं।
जिन कारणों से आहार छोड़ते हैं वे कौन से हैं तो कहते हैं, आतंक होने पर।
अब ग्रहण करने के कारण बताया, अब आहार को त्यागते हैं तो किन किन कारणों से त्यागना चाहिए, त्यागने की भी कारण बताया है। ग्रहण करने के कारण बताया है तो त्यागने की भी कारण बता रहे हैं, क्यों त्यागना चाहिए।
आतंक होने पर।
आतंक यानी कोई उपसर्ग आदि आने पर, आतंक होने पर, उपसर्ग आदि आने पर आहार त्यागते हैं।
उपसर्ग आने पर
अलग से कहा क्या
आतंक में कहा है, आकस्मिक कोई व्याधि उत्पन्न हो गई जो कि मारना
आतंक, रोग आदि होने पर, रोग आदि होने पर भी आहार त्यागते हैं। असाध्य रोग उत्पन्न हो गया तो समाधि मरण धारण करेंगे, समाधि का अभ्यास स्टार्ट करेंगे, वो आहार त्यागते त्यागते कम करते करते समाधि ले लेंगे। बड़ा कोई रोग हो गया तो, और यदि छोटा मोटा रोग कोई है तो उसका इलाज करवाते हैं, आहार त्यागते नहीं, इलाज करवाते हैं।
उपसर्ग के आने पर।
उपसर्ग आ गया तो भी आहार का त्याग करते हैं। असाध्य उपसर्ग यानी जिस उपसर्ग में बचना संभव नहीं, ऐसे उपसर्ग में, छोटे मोटे उपसर्ग में नहीं, वो तो परिचय हो जाएगा। कोई कुछ कह रहा है तो आक्रोश परिचय है, उपसर्ग नहीं है, पर प्राणों को ही हरण करने योग्य, प्राण हरण ही हो जाए ऐसा कोई कष्ट आतंक आ जाए तो वो आहार त्याग करते हैं। जैसे भूकंप आ गया, नदी के बाढ़ में बहने लगे, भूकंप आ गया, नदी की बाढ़ वगैरह आ गया, या बिजली गिरी, ऐसा कुछ भी आ सकता है, वो प्रकृतिगत उपसर्ग। उपसर्ग चार प्रकार का हो सकता है, मनुष्यों के द्वारा किया जाने वाला उपसर्ग, तिरंचों के द्वारा होने वाला उपसर्ग, देवों के द्वारा होने वाला उपसर्ग, और प्रकृति के द्वारा होने वाला उपसर्ग, नैसर्गिक उपसर्ग। उसको शक्तियानुसार सहन करते हैं तो समाधि लेने की जरूरत नहीं रहती, आहार त्यागना और समाधि लेना आवश्यक नहीं, उसको तो वो झेल लेंगे, उपसर्ग परिचय कह करके झेल लेंगे। परंतु यदि प्राण हरण करने लायक ही कोई परिस्थिति आकर के खड़ी है, परिस्थिति उपस्थित हो गई है, तो उस समय तुरंत वो आहार का त्याग करेंगे और संकल्प ले लेंगे। अगर इस उपसर्ग असाध्य उपसर्ग में हम यदि बचे तो आहार लेंगे, नहीं बचेंगे तो ये आहार त्याग कंटिन्यू रहेगा, ऐसा संकल्प करते हैं। तो इन कारणों से आहार का त्याग करना चाहिए, क्योंकि मरण कैसे होना चाहिए, समाधि पूर्वक होना चाहिए। समाधि मरण एक अंतिम व्रत है जीवन में, वो इस समय नहीं रहता। इस समय व्रतों का संयम का पालन करते रहते हैं, लास्ट में जाकर उस व्रत को भी ग्रहण करना होता है। कहते हैं ना कि वो संलेखना ले ली, ये संलेखना ले ली, संलेखना मतलब वो अंत में होता है, परिस्थिति आने के बाद होता है, माहौल अगर उसका बन गया तो आहार का त्याग करते हैं।
ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु,
हाँ ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु भी आहार करना पड़ता है, मतलब ब्रह्मचर्य पालन के योग्य जैसा भी आहार चाहिए, उचित आहार, आहार तो चाहिए ही परंतु उसमें हानिकारक आहार भी है और नुकसानदायक लाभकारक हानि भी है। तो सात्विक भोजन जिसको बोलते हैं, गरिष्ठ भोजन न होकर सात्विक भोजन, सात्विक भोजन से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है और गरिष्ठ भोजन से ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो पाती। हाँ, और
प्राणी दया के लिए,
प्राणी दया के लिए भी आहार लेना ही चाहिए, आहार नहीं लेंगे तो हाँ त्यागने का, प्राणी दया करने के लिए तो लेते ही हैं, लेकिन प्राणी दया करने के लिए भी त्यागा भी जा सकता है। इन्हें चलने फिरते समय जीव रक्षा तो होना ही चाहिए, उससे उठने बैठने के लिए शक्ति चाहिए, नहीं तो उनकी रक्षा नहीं होगी। अब यहाँ विशेष आहार लेने से प्राणी की रक्षा नहीं होती हो तो जिस आहार के लेने से जीव रक्षा नहीं हो सकती उस आहार को त्यागना चाहिए। जैसे श्रावक अनछना जल से, अनछना जल से आहार तैयार करता है तो उसमें त्रस जीवों की हिंसा हुई है, छाना नहीं है, तो त्रस जीवों की रक्षा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, त्रस जीव इसमें है, भविष्य में त्रस जीव की रक्षा, त्रस जीव की हानि मेरे से ना हो और त्रस जीवों की रक्षा हो, इसलिए जो भोजन त्रस जीवों की हिंसा से उत्पन्न हुआ है विधिवत तैयार नहीं किया है और वह पता चला तो उसको त्याग देंगे। वो जीव रक्षा के लिए जीव हिंसा से सहित भोजन को त्याग देंगे, जीव रक्षा के लिए त्यागना चाहिए। उपसर्ग के कारण मनुष्यकृत उपसर्ग है वो,
तब के लिए,
तप के लिए भी आहार त्यागना चाहिए। जैसे उपवास एक तप है, अनशन जिसको बोलते हैं, उपवास में अनशन, ऊनोदर भी तप है, ऊनोदर में भोजन को एक देश त्यागा जाता है और अनशन में भोजन को पूर्णतः त्यागा जाता है, ये बहिरंग तप है। इन दोनों प्रकार के तपों को करने के लिए भी आहार का त्याग करना चाहिए। त्याग हो ही जाता है, अनशन ही भोजन का त्याग ही तप है, तो अनशन भी तप है और ऊनोदर भी तप है।
संन्यास के लिए आहार त्याग होता है,
संन्यास
लिखना क्या
होगी, सबसे संन्यास लिखना समाधि के लिए, संन्यास मरण कहते हैं, समाधि मरण, संन्यास मरण, संन्यास समाधि के काल में भी, यानी समाधि मरण की, समाधि मरण के लाभ के लिए आहार को त्यागना चाहिए। देखो हो गए, अब क्या है,
आचार्य वृत्ति,
आचार्य वृत्ति हो
आत्म यानी आकस्मिक कोई व्याधि उत्पन्न हो गई जो कि मारणांतिक पीड़ा कारक है, ऐसे प्रसंग में आहार का त्याग कर दिया जाता है। उपसर्ग, देव, मनुष्य, तिरेन और अचेतन कृत उपसर्ग के उपस्थित होने पर भोजन का त्याग होता है।
रोग के असाध्य रोग हो गया, वेदना बहुत है, पीड़ा बहुत है और वो ठीक होना संभव नहीं है, तो आहार का त्याग कर संन्यास स्मरण ग्रहण करना चाहिए। अचेतन करते ने नैसर्गिक किसी के ऊपर दीवार गिर गई, छत गिर गया, भूकंप हो गया, हाँ, या बिजली गिर गई, ये सब अचेतन कृत उपसर्ग, या एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी से, क्योंकि अचेतन कृत उपसर्ग। चेतन का उपसर्ग तो व्यक्ति स्वयं उपसर्ग करने के दृष्टिकोण से करता है, तो एक्सीडेंट ऐसा नहीं, एकाएकी गाड़ी टकराई तो उसमें भी हो सकता है, कई साधुओं का हुआ भी है,
बहुत हुआ है।
तो उस समय में मतलब एक्सीडेंट के काल में अगर बहुत लगा है और बचने की संभावना नहीं है तो संलेख नाम मरण तुरंत ले लेते हैं, और बचने की संभावना है तो उपचार भी कर लेते हैं, बच सकते हैं तो उपचार भी है, नहीं बच सकते हैं तो संलेख नाम। नहीं, पता चलता है मरण के लक्षण, पता चलते हैं खुद को भी, पता चलते आयु कर्म की उदीर्णा स्पीड होने लग जाए और इसमें मैं नहीं बच सकता ऐसा आभास होता है, और कुछ तो डॉक्टर भी बताता है, परंतु डॉक्टर को जितना नहीं होता उतना ज्यादा अपने को आभास होता है बचेंगे या नहीं बचेंगे। अब वो मरण काल ही पता चलेगा, ऐसा अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो अच्छे हैं, हमको कैसे पता चलेगा, ऐसा ही लगेगा, पर मरण आने के बाद हम तो जाने वाले हैं ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा स्वयं ही कहने लगता है वो। अभी हिमालय में हो गया क्या? नहीं, कांड प्रकृति कृत अचेतन कृत उपसर्ग है वो, उसमें अगर कोई मुनि होते तो उधर ही अटक जाते ना, वो निश्चित समाधि मरण होता उनका। यात्री लोग मुनि महाराज को ले गए दर्शन के लिए और वहां अटक गए, एकदम पानी गिर गया, अब तो प्रतिबंध लगा दिया, या बरसात के दिनों में वहां विहार नहीं कर सकते, प्रतिबंध लग गए। बहुत बड़ा कांड हो गया ऐसा, इतना इतने बड़े पैमाने में बादल कभी कभी किसी जगह भी फटे नहीं थे। एक बार मुंबई में हुआ था, बाढ़ आ गई थी, एकदम सभी धरण बांध वगैरह बंद भर गए थे, हाँ, और एकदम से छोड़ा तो उधर सांगली तरफ जितनी वो बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो सांगली पानी में आ गया था पूरा 2005 में। 17-18 दिन तक सिटी पानी में था, 18 दिन लोग सिटी में नाव से घूमते थे नाव से दूसरी मंजिल पर, पहले मंजिल तो डूब गए थे सबके, दूसरी मंजिल पर रहते थे।
ब्रह्मचर्य बुद्धि की रक्षा के लिए अर्थात अच्छी तरह ब्रह्मचर्य को निर्मल करने हेतु सप्तम धातु अर्थात वीर्य का क्षय करने के लिए आहार का त्याग होता है। यदि मैं आहार ग्रहण करता हूँ तो बहुत से प्राणियों का घात होता है, इसलिए आहार ग्रहण नहीं करूंगा इस तरह जीव दया के निमित्त हार का त्याग करते हैं। बारह प्रकार के तपों में अनशन तप एक है, उसे मैं करूंगा। ऐसे तप के लिए भी आहार छोड़ देते हैं तथा संन्यास काल में अर्थात वृद्धावस्था में मेरी मुनि अवस्था में हानि करने वाली है। मैं दुसाध्य रोग से युक्त हूँ, मेरी इंद्रिया विकल हो गई है या मेरे स्वाध्याय की हानि हो रही है, मेरे जीने के लिए अब कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार के प्रसंगों में शरीर का परित्याग करना होता है, इसी का नाम संन्यास मरण है। उस संन्यास मरण के निमित्त आहार का त्याग करते हैं, अर्थात इन छह कारणों से आहार का त्याग करना चाहिए।
त्याग करने के भी छह कारण हैं और ग्रहण करने के भी छह कारण हैं। ये बारह कारण है, ये पता रहना चाहिए। अगर ये पता नहीं रहेगा तो अविवेक से कभी भी त्याग करेंगे तो अकाल मरण होगा। तो अविवेक से यदि त्याग होता है तो वो समाधि मरण नहीं कहलाएगा।
यहाँ पूर्व कारणों के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि विषय विभाग देखा जाता है। क्षुधा वेदना आदि के होने पर भी आतंक हो सकता है, अथवा यदि प्रचुर जीव हत्या दिखती है तो भोजन आदि त्याग कर देते हैं। शरीर पीड़ा रहित साधु के तपश्चरण होता है, इसलिए विरोध नहीं है कि क्योंकि विषय भेद देखा जाता है। आहार शब्द की अनिरुक्ति होने से यहाँ पर भी गाथा में विच्छेद के साथ आहार का विच्छेद अर्थात त्याग करना ऐसा संबंध जोड़ लेना चाहिए। इनके लिए पुनः आहार कदाचित भी न करें, इसी बात को बताते हैं। न बल के लिए, न आयु के लिए और न स्वाद के लिए, न शरीर की पुष्टि के लिए और न तेज के लिए आहार ग्रहण करें, किंतु ज्ञान के लिए, संयम के लिए और ध्यान के लिए आहार ग्रहण करें।
अच्छा, शरीर को बढ़ाने के लिए,
बल के लिए, आयु के
बल के लिए, शरीर में बल आ जाए, ये उद्देश्य नहीं रहता। संयम पालन करने के लिए शरीर में बल चाहिए, तो उस बल के लिए आहार ग्रहण करते हैं। तो शरीर का बल का मतलब जैसे बहुत ज्यादा बल बढ़ाने का ही एक लक्ष्य बन गया, वो नहीं, वो भौतिक दृष्टि है। हाँ, संयम पालन करने के लिए शरीर में जितना बल चाहिए उतनी बल की रक्षा के लिए आहार करे, तो उसमें संयम की ही रक्षा का मूल उद्देश्य रहता है, इसलिए वो गलत नहीं है।
न आयु के लिए, न स्वाद के लिए,
न आयु के लिए, यानी आयु बढ़े, बढ़ता तो है ही नहीं, आयु जितनी बंधी है उतनी ही रहेगी।
आयु बढ़ जा रही
है। हाँ, आयु बढ़ती कैसे? उत्कर्षण होगा क्या? बुद्धिमान में उत्कर्षण नहीं होता, बुद्धिमान आयु में उत्कर्षण नहीं होता। आयु बढ़ जाए ऐसा नहीं, दीर्घ काल तक मैं जीऊं, यानी जितनी आयु है दीर्घ काल तक मैं जीऊं ऐसा भावना रखें, हाँ, जीवित रहने के लिए आहार। अब जीवित रहने की संभावना नहीं है और फिर भी जीवित रहने की चेष्टा चल रही है, तो वो आयु बढ़ाने के उद्देश्य से आहार ग्रहण करते हैं, तो वो गलत है। बाकी सब शरीर स्वस्थ है, संयम का पालन भी अच्छी तरह से हो रहा है और फिर भी आयु को बढ़ाने के उद्देश्य आहार करते हैं या वही लक्ष्य बनता है, तो वो दोषपूर्ण है। हाँ, वो आतंक था, आतंक यानी व्याधि, व्याधि व्याधि के कारण से संलेखना तो लेना चाहिए, परंतु वो व्याधि उनकी असाध्य व्याधि नहीं थी, ठीक भी हो सकती थी। इसलिए गुरु ने कहा कि तुमको जैसा भी बने वैसा ठीक करके आ जाओ, ये ठीक होने के लायक है, आपको संलेखना नहीं लेना है। तो गुरु का आदेश मान करके उन्होंने आहार ग्रहण किया और वो ठीक हो गया। तो वो त्यागने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गुरु ने मना कर दिया। हाँ, और गुरु ने मना कर दिया तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, हम आहार नहीं लेंगे, तो ये जो संयम पालन अभी मेरे द्वारा शरीर के द्वारा रोग ठीक करने पर हो सकता है, ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर वो उन्होंने आहार ग्रहण किया और रोग को ठीक करके पुनः दीक्षा ले ली, मुनि दीक्षा ले ली। भस्मक व्याधि हो गई थी, भस्मक रोग हो गया था।
किंतु ज्ञान के लिए संयम के लिए तो हो गया आचार्य वृत्ति में, युद्धादि में समर्थ ऐसा बल मेरे हो जावे, इस हेतु मुनि आहार नहीं करते हैं।
क्या युद्धादि में?
युद्धादि में समर्थ ऐसा बल मेरे हो जावे।
हाँ, युद्ध आदि के काल में मैं अपने आप की रक्षा कर सकूं, इसलिए बल चाहिए। तो ये उल्टा विचार है, उसके लिए फिर तो पूरा सैनिक जैसे बल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे सैनिक सैनिक बचते हैं, वैसा हमको भी बचना है। उस समय बल चाहिए, कोई भी आपत्ति आने पर झेलने के लिए बल चाहिए। उस उद्देश्य से
इससे तो मुनि आहार नहीं करते, मेरी आयु बढ़ जावे इसीलिए भी आहार नहीं करते। इस भोजन का स्वाद बढ़िया है, इस प्रकार स्वाद के लिए भी भोजन नहीं करते हैं। मेरा शरीर पुष्ट हो जावे अथवा मांस की वृद्धि हो जावे इसीलिए भोजन नहीं करते हैं, और मेरे शरीर में दिक्कत हो या दर्प हो इसीलिए भी आहार ग्रहण नहीं करते।
देखो, बल बढ़ाना, मांस बढ़ाना, शरीर की पुष्टि के लिए आहार नहीं करते। दृष्टि उल्टी नहीं हो सकती, समीचीन दृष्टि से ही सोचेंगे वो।
मेरा स्वाध्याय चलता रहे इस तरह ज्ञान के लिए आहार करते हैं, मेरा संयम पलता रहे इस तरह संयम के लिए आहार करते हैं, और आहार के बिना ध्यान नहीं हो सकेगा इसीलिए ध्यान के हेतु यत्ति आहार करते हैं। अर्थात ज्ञान संयम और ध्यान की वृद्धि के लिए सिद्धि के लिए उन्हें आहार करते हैं।
ठीक, ये सब कारण आ गए थे।
कैसा आहार ग्रहण करते है सो ही बताते हैं। नव कोटि से शुद्ध भोजन जो कि 42 दोषों से रहित है, संयोजना से हीन है, प्रमाण सहित है और विधि पूर्वक दिया जाता है, जो कि अंगार दोष से।
पहली बात,
नव कोटि से शुद्ध भोजन,
नव कोटि यानी 9 करोड़। नव कोटि यानी क्या? नहीं, नवदा भक्ति नहीं,
बहुत इंपॉर्टेंट है।
नव कोटि नवदा भक्ति तो श्रावक के हैं, मुनि को नव कोटि से आहार करना चाहिए ये बता रहे हैं। तो नव कोटि का मतलब होता है मन वचन काय कृतकारी तन्मोदना और समरंभ समारंभ आरंभ, ऐसे। मतलब आहार को करने के लिए आहार स्वयं नहीं पकाएंगे, ये एक कोटि हो गए। कृत कारित आहार को कराएंगे नहीं, ये दूसरी कोटि हो गई। नवदा भक्ति नहीं, कोटि। और अनुमोदना नहीं करेंगे। अनुमोदना कैसे? ये आपने जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, ऐसी अनुमोदना। आपने जो आहार निर्माण किया है ये बहुत ठीक है, ऐसे उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे। कृतकारिता अनुमोदना, मन वचन काय, मन से नहीं कहेंगे, वचन से नहीं कहेंगे और काय से भी नहीं करेंगे, भोजन तैयार नहीं करेंगे। मन वचन काय कृतकारी तन्मोदना संभ्रम्भ समारंभ आरंभ। संभ्रम्भ यानी विचार, कराऊं क्या, करना चाहिए, ये विचार आ गया। आहार निर्माण कराना चाहिए, विचार संभ्रम्भ है ये। समारंभ, विचार आया और उस विचार को साकार बनाने के लिए बुलाया और ऐसा कहा तो समारंभ हो गया और फिर उसको लिया, करा के ले लिया तो ये आरंभ हो गया। विचारों में आना संभ्रम्भ और विचारों को और आगे बढ़ाना लेने हेतु समारंभ, और लेना, लेने के लिए तैयारी हो जाना, रेडी ही हो जाना, ये आरंभ है। तो ये नौ कोटि कहलाते। इस नौ कोटि से मुनि बचकर आहार लेते हैं, नौ कोटि से बचते हैं पर नवधा भक्ति से नहीं बचते। नवधा भक्ति है या नहीं देखते हैं, नवधा भक्ति हो तो ही लेते हैं।
संयोजना से ही नहीं, नौ कोटि से शुद्ध भोजन जो कि
संयोजना दोष प्रमाण दोष 42 दोष ये सब पढ़ करके आए हैं, उससे रहित आहार लेते हैं।
जो आहार नौ कोटि से परिशुद्ध है, ये नौ कोटि क्या है? मन से कृतकारित अनुमोदना का होना ये तीन कोटि है, वचन से कृतकारित अनुमोदना ये तीन कोटि है, तथा काय से कृतकारित अनुमोदना ये तीन कोटि है। ऐसे ये नौ कोटि हुई। इस नौ कोटि से शुद्ध आहार को मुनि ग्रहण करते हैं, अर्थात मुनि मन वचन काय से आहार न बनाते हैं, न बनवाते हैं और न अनुमोदना करते हैं। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष और 10 ऐषणा दोष, ये 42 दोष है। इनसे रहित, संयोजना दोष से रहित और प्रमाण सहित आहार लेते हैं, तथा विधि से दिया गया हो, अर्थात पड़गाहन होना, पड़गाहन करना, उच्च स्थान देना, पाद प्रक्षालन करना, अर्चना करना, प्रणाम करना, मन वचन काय की शुद्धि तथा आहार की शुद्धि, यह नवधा भक्ति कहलाती है। नवधा भक्ति विधि कहलाती है।
नवधा भक्ति को विधि कहते हैं। विधि से आहार मिलता है तो लेते हैं, नहीं तो आहार को त्याग देते हैं। विधि की क्या जरूरत है? पूजन की, उनको क्या पूजन की आशा है क्या कि हमारी पूजा करे तभी देऊंगा? तो नवधा भक्ति की अनिवार्यता क्या है? वैसे ही आहार ले ले। हाँ, विनय विनय
विनय
हाँ, यदि विधि नहीं रहेगी तो अविनय पूर्वक आहार लेना होगा, अनादर पूर्वक आहार होगा। और यदि विधि नहीं होगी तो अपन अपने तरफ से ले रहे हैं तो वो हो जाएगा, मतलब याचना हो जाएगी। ये विधि को इसलिए रखा है कि याचना न करे मुनि महाराज, याचना करते हुए ना आए। हाँ, फर्क नहीं दिखेगा, वो भी है, परंतु फर्क रहे या न रहे, वहां मुख्य रूप से ये है कि मुनि के जीवन में याचना नहीं है, इसलिए विधि को लागू कर दिया। यानी श्रावक देने के लिए खड़ा हो तो लेंगे, नहीं तो नहीं। याचना नहीं आना चाहिए, मांग नहीं, और अभिनय भी नहीं। अभिनय से बचने के लिए पूजा रखी, पूजा करो, अर्चना करो, नमस्कार करो, विनय के साथ प्रार्थना करो, तब ग्रहण करेंगे। देखो कितना बढ़िया रास्ता बता दिया भगवान ने, ऐसा हो तो आहार लेना, नहीं तो नहीं लेना, कहा हमने भगवान ने।
नवदा भक्ति से हार देते तो नहीं।
और भगवान से कोई पूछे, हे भगवान ये सब हमारे लिए बता रहे हो कि आप भी करते हो? भगवान कहते हैं मैं भी ऐसा ही लेता हूं। जब मुनि अवस्था में था इसी प्रकार से आहार करता था, मैं कभी किसी से याचना नहीं की, किसी के अनादर दृष्टि को स्वीकार नहीं किया, उसकी भक्ति हो और प्रार्थना के बिना नहीं गया, प्रार्थना हो तो ही गया। यानी पड़गाहन, पड़गाहन तो एक प्रार्थना है, अत्रो तिष्ठ तिष्ठ यानी रुकने के लिए प्रार्थना किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, तो ऐसे निवेदन किए बिना नहीं लेना। पड़गाने के लिए खड़े नहीं हैं तो लेना नहीं, और पड़गान के लिए खड़े भी नहीं है और वो अंदर चले गए। और जाकर के वहां खड़े हो गए तो अतिक्रम हो जाएगा वो। जैसे लोग रोड का अतिक्रम करते हैं ना, आगे आगे आते हैं और अपनी सीढ़ी और घर के गटर वगैरह आगे ही जाते रहते हैं, और रोड इतना सा बच जाता है, सरकार फिर अतिक्रम हटाती है। तो भोजन के लिए भी कहां तक जाना चाहिए श्रावक के घर, वो भी एक नियम लोग बताया है, अंदर नहीं जाना, वो आंगन में दिखे तो उनके आंगन तक जा सकते हैं, यानी बाहर रोड के बाहर, घर को छोड़कर रोड पर उनके उनका आंगन कहलाता है। उस आंगन से और अंदर जाकर के जैसे एक वो है कंपाउंड है, और कंपाउंड के भीतर वो है, तो कंपाउंड के भीतर नहीं जाना, वो स्वयं कंपाउंड के बाहर आए हो, पड़गा रहे हो, रोक रहे हो, निवेदन कर रहे हो, विनयशील दिखते हो, नवदा भक्ति करना आता हो, शुद्धि बोलना आता हो, ये सब लक्षण देख करके रुकना, नहीं तो आगे बढ़ना। ऐसा दिगंबर मुनिचर्या को बहुत संभाला है। देखो सब बदल सकता है, मुनिचर्या नहीं बदल सकती, सब बदल सकता है
पर बदलती नहीं।
हाँ बदलती नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। चर्या तो चर्या है, आहार ये एक आहार के पीछे देखो कितने संविधान लागू किए गए। संविधान ग्रंथ ही लिखा गया। हाँ इसलिए दिगंबर जैन धर्म में दिगंबर साधुओं में शीतलाचार दिखाई नहीं देता, आहार करने में याचना है, दीनता है, आहार के प्रति दिखाई नहीं दे पाई, अद्वा तद्वा खाना है, यहां तक कि कितने ग्रास खाना ये भी बताए, 32 ग्रास, 32 ग्रास खाने को बताया, और 32 ग्रास बहुत होता है वो, हमने देख लिया, 3 लोग खाने लायक है वो, परंतु उतना खा नहीं सकते, क्योंकि जिस समय ये लिखा होगा उस समय इतना भोजन था उनका। देखो उतना भोजन 2000 साल पहले तो होगा, और ये जो ग्रंथ लिखा है 2000 साल पहले ही लिखा है, तो उस समय इस समय जो 3 लोगों का भोजन है, भात है, उस समय एक जन का भात था वो, और इसके बाद पानी भी पिएंगे वो। तो उस समय भोजन अधिक था, अब सहनन कम होने लगा, शरीर की अवगाहना यानी उन शरीर की ऊंचाई कम हो गई, सभी शरीर की संरचनाएं छोटी छोटी हैं, तो उसमें कितना डाल सकते हैं, अभी जाते जाते कम होने वाला है, बढ़ेगा नहीं आहार। आपके घर में जो बड़े बड़े लोग थे पहले के, वो आपसे ज्यादा खाते थे कम कम खाते थे? ज्यादा खाते थे, और उसके पीछे उनके और वो और खाते थे ज्यादा, और ऐसे ऐसे जाते जाते 1000 साल पीछे जाओ तो 1000 चावल का 1 ग्रास वो आ ही जाएगा टाइम। तो भगवान महावीर के काल में यानी ढाई हजार साल पहले इतना भोजन करते थे लोग, जो आज तीन लोग करते हैं अकेले करते थे, इतना भोजन था। यानी कम से कम वो 12 फुट के रहते थे, तो 12 फुट के मनुष्य को इतना भोजन तो चाहिए, वो कोई ज्यादा नहीं है 12 फुट के आदमी को। महावीर भगवान का शरीर 12 फुट का था, तो उस टाइम उतना भोजन अवश्य था। तो उस टाइम का उपदेश ही आचार्यों ने लिख रखा है कि भाई इसका वो कितने चावलों का, चावल के दानों का, कितने चावल के दानों का एक ग्रास बनेगा, तो कहेंगे 1000। 1000 चावलों को पकाने पर जो भात बनेगा वो एक ग्रास माना जाएगा। और ऐसे आप 32 ग्रास आहार ग्रहण कर सकते हैं। तो उस समय 1000 चावल का था और इस समय
चावल भी छोटे हो गए ना, चावल भी छोटे
तीन किलो हो गए।
उस समय चावल भी
बड़े होते
थे ना, थोड़ा 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 मामूली बढ़ेगा उसका आकार भी।
3 किलो हो गए, 1000 चावल बोले तो 100 ग्राम।
हाँ हाँ हाँ,
देखा
है क्या?
नहीं
देखा नहीं। नहीं नहीं, इस बात को गिन करके अभी परसों के दिन ही देखा है कि 1000 चावल को 32 ग्रास बना करके, एक एक हजार के 32, यानी कितने हजार, 32000 चावल को गिन करके पका करके देखा, वो इतना चावल भात होता है, इतना भात होता है इतना। ग्रास रहेगा 32, उसके साथ पानी भी तो रहेगा, वो कितना, इतने चावल को पकाने के लिए कम से कम 2 लीटर 3 लीटर पानी चाहिए। तो उस हिसाब से पानी भी ज्यादा पियेंगे। आज का हम लोगों का शरीर एक धनुष रह गया। आदिनाथ भगवान का शरीर 500 धनुष का था, तो शरीर जब 500 से घटता घटता एक रह गया, एक धनुष रह गया, तो चावल भी 500 गुना ही रहेगा ना। आज के चावल की मोटाई से 500 गुना मोटा, आज के 500 चावल का मतलब उस समय का एक चावल, और ऐसे 1000 चावल का उस समय का एक ग्रास, उन चावलों का जो मोटा होता था। तो आदिनाथ भगवान का आहार कितना रहा होगा, अंदाज लगाओ। यानी 500 चावलों का इतना मोटा तो दाना हो ही जाएगा, एक चने के दाने से भी मोटा, यानी मूंगफली के दाने की दाने से भी मोटा हो सकता है। हाँ चावल ज्यादा होगा, 500 चावल बहुत होते हैं, ज्यादा हो जाएगा। एक आंवला, हाँ एक आंवला, एक आंवले के बराबर चावल बड़े थे उस समय आदिनाथ भगवान के काल में। और ऐसे 1000 चावल पकाओ तो एक ग्रास होगा, और 32000 खाते थे उस समय, तो कितना अन्न और कितना, और पकाने के लिए कितना बड़ा वो चाहिए। उस टाइम के बर्तन तो ये रूम के बराबर बर्तन थे, और मनुष्य का शरीर 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर ऊंचा, और फिर उनके सामने बर्तन कितना बड़ा, इस रूम के बराबर, ये तो छोटा बर्तन हो गया। उनके बर्तन में तो पूरे प्रवचन हाल बन जाएगा। इतने बड़े मनुष्य थे, एक कोटा कोटी सागरोपम के पीछे की बात है ना ये, तो ऊंचाई क्रमशः घटती 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 आई। महावीर भगवान 12 फुट के थे, 12 फुट के, और पांचनाथ भगवान उससे भी ऊंचे थे। तो मनुष्यों की ऊंचाई पीछे पीछे ज्यादा ही रहा है, कम कभी नहीं रहा, घट जरूर रहा है पर पीछे कम कभी नहीं रहा है। और मनुष्य की टोटल ऊंचाई, मनुष्य अधिक से अधिक हाईएस्ट किसी भी काल में बड़ा हो सकता है तो कितना, 500 धनुष नहीं, ये तो चतुर्थ काल की ऊंचाई है, तृतीय काल में उससे ज्यादा, द्वितीय काल में उससे ज्यादा, और चतुर्थ काल में पहले काल में उससे ज्यादा, तो 6000 धनुष के थे। यानी अपन एक ही धनुष के हैं, 6000 लोगों को लेटाओ वो जो लंबाई बनेगी नहीं, गांव के बाहर क्या, 2 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगा, 500 धनुष का ही 1 किलोमीटर होता है, 500 धनुष का, तो 6000 धनुष में कितने 500 बैठते हैं, 1000 में 2,
6000 किलोमीटर,
500 की कितने हिस्से बैठते हैं, 12, हाँ, तो आदिनाथ भगवान उसमें से एक प्रमाण थे, उनके 12 प्रमाण, उनसे भी 12 प्रमाण उनसे आदमी थे, मनुष्य भूभूमि के, उत्तम भूभूमि के मनुष्य इतने बड़े थे और यही थे। उस 12000 धनुष से लेकर, नहीं 6000 धनुष से लेकर घटता घटता अब एक धनुष रह गए। ऊंचाई केवल नहीं घट रही है, आयु भी घटती जा रही है, आयु भी घटती जा रही है। महावीर भगवान उसके पीछे, पार्श्वनाथ भगवान उसके पीछे, नेमिनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान की आयु कितनी थी है किसी को याद है? 1000 वर्ष की थी, 1000 वर्ष की नेमिनाथ भगवान की आयु, यानी तीसरे, वो पीछे तीसरी तीर्थंकर है। पार्श्वनाथ 150 साल के थे, 150 साल की उम्र थी, महावीर 72 साल के थे, बहुत कम हो गया। आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व वर्ष के थे, पूर्व है ना, ये समझ में नहीं आएगा पश्चिम क्या और पूर्व क्या। कहते हैं 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख को 84 लाख से गुना करने पर, 84 लाख को 84 लाख से गुना करने पर एक पूर्वांग होता है, और ऐसे 84 लाख पूर्वांग को 84 लाख पूर्वांग से गुना करने पर एक पूर्व होता है, और ऐसे 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु आदिनाथ की थी। यानी आप उसको वर्षों में करेंगे कन्वर्ट तो उसके कितने 15 अंक प्रमाण या कुछ अंक प्रमाण आता है, वो उसको आप पढ़ नहीं सकेंगे कि इतने वर्ष आप कह नहीं सकेंगे, वो आपके वो खत्म हो जाएंगे गिनने के हाँ गिनने के वो साधन ही ना, वो खत्म हो जाएंगे, एकम दम सतम सात दशम लक्ष्य, सोलह के आगे, लेकिन उससे ज्यादा है वो,
खरो तक की, खरो तक की, खरो के आगे फिर उसको 1 लाख से गुना करके 1 लाख खरो, 2 लाख करो, ऐसा हो जाता है।
आयु भी घटती जा रही है। तो आदिनाथ भगवान के टाइम में जो पेड़ पौधे थे, पहाड़ थे, चावल थे, मूंगफली थे, गन्ने उन्होंने तीन अंजलि गन्ना ले लिया, रस गन्ने का रस, मुनि दीक्षा के प्रथम आहार में पार्थना श्रेयंस राजा के यहाँ होने पर उन्होंने तीन अंजलि केवल रस ले लिया। तो तीन अंजलि रस आज कितना होता मालूम?
कितनी लीटर होगा?
ऐसा अगर उन्होंने अंजलि कर दिया, एक अंजलि ऐसा कर दिया, तो इसमें आजकल की जो टंकी बनती है बड़े से बड़े वाटर टैंक बनते हैं, बस लाखों लीटर का, तो डाल दो इसमें, एक अंजलि है वो, एक लाख लीटर एक बार में, दो लाख लीटर, तीन लाख लीटर, तीन लाख लीटर गन्ने का रस लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं उतने बड़ी शरीर के लिए। हाँ आज आज नहीं, तीन अंजलि का मतलब आज, हाँ बस बस तीन कटोरे, तीन कटोर, और ये तीन कटोरा अगर चींटी को पता चल जाए आदमी कितना रस पीता है, चींटी अगर कल्पना करे कि आज का आदमी कितना रस पीता है तो उसको लगेगा अजब इतना रस पीता है, मैं जिंदगी भर भी इतना नहीं पी सकता। ऐसे हम लोग चींटी हैं आदिनाथ भगवान के सामने, तीस लाख तीन लाख लीटर वो तो एक दिन में, और वो भी आधा पेट, उसे कुछ लगा ही नहीं वो कहीं। हाँ भूमि भी बड़ी थी, डूब एरिया में आ गई ना, समुद्र वगैरह बढ़ गया तो जमीन कट गया, समुद्र बढ़ता गया, ये बहुत कुछ जमीन देखो, कुछ 40 साल कुछ इस शतमान में 17वीं शताब्दी में कुछ वैज्ञानिकों ने इस भूमि के विस्तार को नापने के लिए दक्षिण दिशा में दक्षिण ध्रुव की ओर यात्रा की, इसका अंत कहाँ है, कितनी दूरी पर है, इसको देखने के लिए गए। तो 40,000 किलोमीटर वो चलते गए, बर्फ के चट्टानों पर से चलते गए, पहाड़ हैं बड़े बड़े, वहां बर्फ ही बर्फ है केवल, और फिर भी अंत नहीं आया, और वैसा ही दिख रहा है वो पुनः। और तो उन्होंने कहा कि इसका अंत कोई लगा नहीं सकता, लौट के आए हो। आज जो विज्ञान ये कहता है कि भूमि गोल है और ज्यादा बड़ा नहीं है, ये सब गलत है, ये सब अनुमानिक विषय। इन्होंने अनुमान कैसे लगाया, ऊपर गए फोटो ले लिया और प्रकाशित भाग को फोटो ले लिया, और प्रकाश जैसे टॉर्च मारने के उपरांत दीवार पर उतना ही दीवार दिखता है, तो दीवार उतनी है क्या गोल? प्रकाश गोल पड़ा तो दीवार भी उतनी है क्या? हमारे कैमरे में जितना पकड़ में आया उतना ही वो बताएगा। तो प्रकाशित भाग कैमरा में आता है, और विज्ञानी ऊपर जाकर के कैमरे से जो फोटो लिया है पृथ्वी का, वो प्रकाशित भाग आया है, परंतु आसपास में जो अंधेरा है वो कहां से आएगा कैमरे में? नहीं आएगा। तो इस प्रकार की उनकी खोजबीन मशीन से है, और मशीन में जितना आता है उतना ही बता रहा है, और उसको उसको ही गोल समझकर इतनी ही पृथ्वी है, इससे बाहर नहीं है, ऐसा कहकर प्रचार किया है। तो ये वैज्ञानिक प्रचार वस्तुतः सत्य नहीं है, और इसके लिए कुछ वैज्ञानिक जो और भी खोजबीन कर रहे हैं वो इसको असत्य सिद्ध कर रहे हैं कि पृथ्वी उतनी ही नहीं है और गोल भी नहीं है, पृथ्वी चपटी है और रोटी के आकार से है और बहुत बड़ी है, इसका कोई अंत नापा नहीं जा सकेगा। ढाई द्वीप रोटी की तरह है क्या, चंडू की तरह गोल है ढाई द्वीप? तो सारे धर्म क्षेत्रों में, धर्म शास्त्रों में, किसी भी संप्रदाय का धर्म शास्त्र क्यों ना हो, पृथ्वी को किसी भी शास्त्र ने गोल नहीं कहा। सभी धर्मशास्त्र लेखक कर्ता जो भी हुए हैं साधु, उन्होंने चपटा ही कहा है। तो ये हम ये बता रहे थे कि पहले काल में 6000 धनुष ऊंचे थे, तो 6000 धनुष मनुष्य एक मनुष्य के लिए कम से कम देखो 12 किलोमीटर चाहिए उनको, 12 किलोमीटर यहाँ लेटा तो 12 किलोमीटर पर सिर रहेगा और यहाँ पांव रहेंगे वो भूमि का आदमी। और उनके मकान भी होते थे जो कल्प वृक्षों से मांगने पर वो बिल्डिंग्स आ जाती थी और उसमें वो सोते थे मकान में। तो 12 किलोमीटर का शरीर ही है तो कमरा कितना बड़ा चाहिए, और पूरा बिल्डिंग अगर 2-3 मंजिल का यदि उनका है तो वो कितना बड़ा होगा अनुमान करो। और आश्चर्य कुछ भी नहीं, इतने बड़े बड़े होते थे मनुष्य के अनुसार ही तो मकान बनेंगे ना, तो इतने बड़े बड़े मकान होते थे। आदिनाथ भगवान के जमाने में वो 500 धनुष के थे तो उनके मकान कितने बड़े होंगे, और 7 मंजिल के मकान में वो जन्मे थे आदिनाथ भगवान अयोध्या में। हाँ, सप्तखंड होता है ना तीर्थंकरों का, 7 मंजिल का ही इंद्र निर्माण करते हैं। तीर्थंकर जहां जन्मते हैं इंद्र उनकी संरचना करता है, जिसको स्वस्तिक महल बोलते हैं। नंद्यावर्त, महावीर भगवान के जहां जन्म हुआ था वो नंद्यावर्त महल था, इंद्र द्वारा रचित था वो, इंद्र उसकी रचना करता है और रत्नमय रहता है। रत्नों की वृष्टि होती है उसी महल पर कितने दिन तक, जन्म के बाद 6 महीने तक, जन्म से पहले 6 महीने रत्नों की वृष्टि होती है। और लोग रत्नों को इकट्ठा करने के लिए बहुत लोग आते हो। हाँ, महावीर भगवान तो लेंगे नहीं, उनको कोई मोह नहीं है, और उनको नहीं चलता है तो हम ले लेते हैं, ये लोग पहुंच जाते थे। सामान्य लोग धन संपत्ति में बहुत अटक जाते हैं ना, मोह उत्पन्न होता है उससे। उद्गल वस्तु से मोह, वो जड़ है और ये चेतन है, चेतन श्रेष्ठ है कि अचेतन श्रेष्ठ है? पर श्रेष्ठ चेतन अचेतन को श्रेष्ठ समझकर जा रहा है तो अपने श्रेष्ठता को भूल रहा है ना। आत्मा चेतन है वो श्रेष्ठ है, उसको रत्न समझो, उसमें जो रत्नत्रय है उन रत्नत्रय को प्राप्त करो, वो असली संपत्ति है। मोक्ष का जो सुख है वही असली लक्ष्मी है, मोक्ष लक्ष्मी, उस लक्ष्मी को प्राप्त करो। ये सब छोड़ करके रत्न के पीछे, सोने के पीछे, चांदी के पीछे, पैसे के पीछे दौड़ लगाता है। अरे ये काय के लिए है, संयममय जीवन व्यतीत करने के लिए ये सभी पदार्थ, धन संपत्ति, वैभव, आहार इत्यादि ये केवल सहयोगी हैं, ऐसा समझ के चलो। इनका सहयोग मिलता है, इनके पीछे पड़ करके, इनसे मोहित हो करके, उसमें मग्न हो करके मरने के लिए नहीं मिले हैं ये। चिंतित होने के लिए नहीं मिले हैं ये, गया तो चिंतित, आया तो बहुत खुशी, इसके लिए नहीं मिले हैं ये। आप धर्म करो, चेतना को समझो, आत्मा को समझो, उसमें संयम में जीवन जियो, और उस संयम के लिए ये अभी पढ़ा ना, क्यों लेना चाहिए आहार, बस मुनि के समान जीवन जियो। मैं जो आहार करता हूं वो संयम के लिए है, मैं जिस घर में रहता हूं वो मेरा आश्रम है और संयम जीवन जीने का आश्रम है, ऐसा विचार करो ना। ये मेरा घर मेरा नाम से मेरे नाम से है, और ऐसा घर मेरे बहुत सारे हैं और भी बनाऊंगा, संयम की तरफ ध्यान ही नहीं है। आत्मा का चिंतन तो कभी नहीं करता, उतना मकान बनाना है, इतनी गाड़ी लेना है, उतनी सोना चांदी बढ़ाना है, इतने धन बढ़ाना है, इतना स्टॉक कराना है, इतना परिग्रह बढ़ाते जाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं, संयम पालन के लिए क्या उतना बड़ा बैंक बैलेंस जरूरी है आपको?
भविष्य के लिए,
भविष्य आपके हाथ में है, आपके मुट्ठी में है, जो इतना बढ़ा रहे हैं उसको, तो भविष्य के लिए भी चाहिए है तो ठीक है। एक जीवन में रोज कितने खाते हैं? ठीक है, जितना खाते हैं उतना भविष्य के लिए कमा के रखो। पर आप सात पीढ़ी तक खा सकते हैं, इतना क्यों कमा रहे हैं? इतना क्यों कमा रहे हैं? और इतना कमाने से ही समाज की व्यवस्था बिगड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति कमा करके इकट्ठा करता है और दूसरा भूखा मरता है, उनको कुछ नहीं मिलता, वो इकट्ठा करके सब ले गए। तो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं सबको मिलना चाहिए ना। हम कम कमाएंगे तो वो भी कम कमाएंगे, वो भी कम कमाएंगे, तो जनसंख्या कितनी भी बढ़े सबके लिए पहुंचता है वो। ये क्या करता है, चावल खरीद के रखता है, साल भर नहीं बेचता, अंतिम महीने में बेचता है। अब एक साल तक बेचारे वो भूखे रहेंगे ना, और एकदम से वो बढ़ा दिया, भाव बढ़ा दिया, ये होता है कि नहीं संसार में? तो इसी का नाम पाप है। स्टॉक में रखा और लोग भूखे से मर रहे हैं, और क्यों रखा? कि ज्यादा पैसे में बेचने के लिए रखा, और एक साल तक फिर लोग क्या खाएंगे? जमीन छोटा है, सीमित है, और उसमें उगा है, आपने पूरा ही स्टॉक में रख दिया तो लोग क्या खाएंगे? और यदि अंतिम माह में बेचेंगे, वो पैसे कहां से लाएंगे इसको खरीदने के लिए? और महंगा बेचेंगे तो उनको ज्यादा पैसा खरीद करके वो खरीदना पड़ेगा, और उसका जीवन उसमें नहीं चलेगा, फिर कर्जा लेगा वो, और कर्जा भी किससे लेगा? आपसे ही लेगा। धान भी आपके पास है और पैसा भी आपके पास है, आप ही कर्जा देंगे। कर्जा देता है और फिर उसको नौकरी कौन देगा? आप ही देंगे, तो नौकरी भी लगा दिया, यानी दिन भर काम करवा करके उनके जीवन को तो पराधीन कर दिया, उनको नौकर बना दिया, और खुद इस तरह से कमाने की कला सीख ली कि स्टॉक करना है। तो ये स्टॉक करने की जो पद्धति है, ये जो वृत्ति है जीव की, ये वस्तुतः पापकारी, इससे पाप बढ़ता है। और अगर वो सड़ गया तो सबको नुकसान, यानी खुद को जितना, खुद तो भूखा नहीं मरेगा सड़ा तो, पैसा ज्यादा है भूखा नहीं मरेगा, लेकिन जिनको वो एक बार उगाया था, एक बार में उगाया था, उसको सबको मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला, सड़ गया तो सड़ने पर फेंक दिया, उसमें भी कीड़े हो गए, मतलब कीड़े होने से सड़ता है, ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। कभी एक बार प्याज को स्टॉक कर दिया था, प्याज, और प्याज इतना स्टॉक कर दिया कि प्याज का भाव बढ़ गया और 40 रुपए किलो हो गए वो। तो ये परिग्रह दे, अगर उसी समय बेचते 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 उचित मूल्य पर बेचते तो गरीबों का पेट भरता। स्टॉक करने से तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई यही बढ़ाता है, और गरीब फिर 40 रुपए किलो जो खरीदेगा, मजबूरी में खरीदेगा, और 10 रुपए किलो में जो था वो 30 रुपए का लाभ खुद ले रहा है, और 30-30 रुपए प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्ति की तरफ से ले लिया उसने, और ये चोरी है। महंगाई बढ़ा करके बेचना ये चोरी ही है, 30 रुपए की चोरी है वो, और चोरी पाप है, और इसी पाप से नरकायु का बंध होता है। भवारंभ परिग्रह तो नारकशायुष्य, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, स्टॉक करने की बुद्धि, बहुत कमाने की बुद्धि, ये चोरी के बिना नहीं हो सकता, किसी के ऊपर अन्याय के बिना नहीं हो सकता, तो इसमें लोक व्यवहार डगमगा जाता है, सामाजिक व्यवहार। तो भगवान ने इसलिए अपरिग्रहवाद को क्यों सिखाया, समाजवाद बना रहे, समाज में सभी सुखी रहे। आप परिग्रह कम रखेंगे, आप रखेंगे, आप रखेंगे, जितना आवश्यक हो उतना ही रखेंगे, आवश्यकता के अनुसार रखेंगे, कोई भूखमरी आएगी नहीं देश में, महंगाई बढ़ेगी नहीं। महंगाई क्यों बढ़ रहा है, आगे अभी सुना था 4 ट्रक पैसे पकड़े गए, 4 ट्रक उसमें हीरे जवाहर चांदी सभी है। अभी अभी ये कल के दिन या परसों के दिन, ये आज ही है क्या, मुझे 4 ट्रक पैसा गिन नहीं पा रहे, पैसे गिनेंगे नोट 4 ट्रक और उसमें हीरे जवाहरत मोती सभी है बता रहे। वो कहां ले जा रहे थे, गुजरात ले जा रहे थे और मुंबई में पकड़ा गया बताते। अब ये क्या है, ये नरकायु नहीं क्या, नरकायु के बंद का कारण नहीं क्या, किसी ने भी कमाया हो, चाहे सरकार ने कमाया हो, क्या वो एक किसी व्यक्तिगत रूप से उसको कमाया हो, अन्याय चोरी कुछ भी पाप करके ही तो कमाया गया है, वो चोरी का माल है और जिसने कमाया उनको खूब पाप लगा और उस पाप का फल भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि लोगों को काट काट करके तो इकट्ठा किया जाता है लोगों के पैसा, तो शोषण होता है गरीबों का, शोषण, गरीब दुखी होते हैं उससे। 10 रुपए के प्याज को आप 40 रुपए में बेच रहे हैं तो उनके 30 रुपए को तो छीन रहे हैं ना, ये चोरी नहीं क्या, ये प्रत्यक्ष चोरी है। व्यापार के नाम से आप मजबूर कर रहे हैं कि 40 रुपए दे दो,
शेतकड़ी को भाव दे रहे बोलते हैं,
और शेतकड़ी को तो कुछ भाव नहीं देते, उससे तो माल सस्ते में खरीदते हैं, 5 रुपए में खरीदेंगे, 10 रुपए में बेचने का रहता है, लेकिन 40 रुपए में बेचने की इच्छा होती है तो साल भर उसको स्टॉक करता है। इस तरह व्यापारी पाप का बंद करता है। अति आशा ठीक नहीं, अति लोग उसमें प्रजा दुखी होती है, देश दरिद्र होने लगता है, हाय हाय त्राय त्राय, व्यवस्था बिगड़ती है, फिर खाने पीने के लिए मजबूर हो जाए, मिलने न मिलने लग जाए तो चोरी बढ़ती है, चोरी डाका डालने के लिए निकल पड़ते हैं लोग, क्योंकि क्या खाना क्या पीना ऐसा समस्या आती है ना। तो एक व्यक्ति बड़ा चोरी करने से सभी लोग चोरी करने के लिए वो भी मजबूर होते हैं और उनको भी पाप करना पड़ता है। एक ने बड़ा पाप किया तो छोटे छोटे पाप करने वाले लाखों तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वस्तु नहीं कहां से लाए, तो वस्तु लाने की जिंदगी जाना पड़ेगा, पेट भरना है। सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है परिग्रहवाद से, और अपरिग्रहवाद से सामाजिक व्यवस्था बनती जाती है। इसलिए महावीर भगवान का मुख्य सिद्धांत अपरिग्रहवाद। उन्होंने मुनियों को कहा तुम कुछ भी मत रखो, एक वस्त्र भी मत रखो, यहां तक ला दिया उनको, एक वस्त्र भी नहीं रहेगा तो तुमको जरा भी पाप कर्म का बंध नहीं होगा, और जरा भी पाप कर्म नहीं बांधोगे तो तुमको तो मोक्ष मिलना ही है। और इनको साधु का ऐसा जो करेगा वो साधु, और जो कुछ रखेगा वो गृहस्थ। अब रखने वाला एक लंगोटी से लेकर थोड़े 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 सब परिग्रह बढ़ता जाता है, सोना चांदी बर्तन रुपया पैसा नौकर चाकर मकान दुकान, इनकी संख्या बढ़ती जाती है, धन बढ़ता जाता है, कम करते 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 लास्ट में एक लंगोटी रह जाती है, बढ़ाते 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 पूरी धरती अपनी हो जाती है, चक्रवर्ती बनता है। चक्रवर्ती बनाने में कोई सुख नहीं है, साधु बनने में सुख है। देखो इस छोर 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती है, तो उस छोर जिनके पास बिल्कुल शून्य है परिग्रह वो साधु है, उधर भी महाराज खड़े हैं, इधर भी महाराज खड़े हैं, ये चक्रवर्ती महाराज राजा को महाराज ही बोलते हैं ना महाराज और हमको भी महाराज बोलते हैं, दोनों तट पर महाराज हैं, बीच में आप लोग हैं और दोनों महाराजों के बीच में आपका राज नहीं चलता इसलिए हम सुलभ मार्ग बताते हैं। मुनि महाराज बनना सुलभ है, इसी भाव में इसी जन्म में इसी शरीर से चक्रवर्ती महाराज बनना सुलभ नहीं है, बन ही नहीं सकोगे, इसलिए एक महाराज बनो, मुनि महाराज बन जाओ बहुत अच्छा है, या तो इस तट पर आओ या तो उस तट पर आओ, बीच का राज ठीक नहीं, महाराज का राज ठीक है या तो चक्रवर्ती का राज ठीक है चक्रवर्ती दीक्षा लेगा ना तो उसके पीछे ये बीच वाले सभी हम उनके पीछे चले जाते, दीक्षा ले लेते हैं। बड़ा परिग्रहधारी चक्रवर्ती, बहुत बड़ा परिग्रह रहता है, पर रंच मात्र भी उसके प्रति मोह भाव राग भाव पाप बुद्धि नहीं रहती, इकट्ठे करने की बुद्धि नहीं, वो तो किमिच्छिक दान देता रहता है, ले जाओ क्या चाहते, ये चाहिए हो ले जाओ, सुखी रहो बस, मेरे आंखों के सामने दुखी नहीं रहना, चक्रवर्ती ऐसा होता है। ये भी बांटता है, ये धर्मात्मा रहता है चक्रवर्ती, परंतु आज के जो धन इकट्ठा करने वाले विदेशों में जमा करने वाले ये चक्रवर्ती तो नहीं है, लेकिन धन जो इकट्ठा किया जा रहा है जिससे पाप बढ़ रहा है, ये दान कुछ नहीं देते, संग्रह ही करते जाते, चक्रवर्ती दान देता, चक्रवर्ती कहता है कि ये जो मिला है ये मेरे पुण्य के उदय से जरूर मिला है, लेकिन ये मेरा नहीं है, इसमें से मेरा कितना है, मैं जो एक बार खाता हूं उतना ही मेरा, बाकी सब प्रजा का है, वो खाएंगे इसमें, ऐसे विचार उनके रहते हैं। और आज देश में जो धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं, कोई भी काम करो, बड़ो किसी पद पर बैठ जाओ, शोषण कर लो, इकट्ठा करो, ज्यादा आ गया तो विदेश में रखो नहीं तो छापा पड़ जाएगा यहां इसलिए वहां जाकर के रखते हैं, बीच वाले पाप बहुत करते हैं, चक्रवर्ती इतना पाप नहीं करता, इतना परिग्रह होने के बाद भी पापी नहीं होता, वो उसकी दान की बुद्धि होती है, उपकार की बुद्धि होती है, वो कहता है कि मैं एक बार जो खाता हूं वही मेरा, बाकी सब ले जाओ, तो चोरी कौन करेगा, ये स्वयं दे रहे हैं, मैं ले जा नहीं सकता सिर पर, इतनी हिम्मत ताकत भी नहीं मेरी, उन्हें वो जो दे रहा है ले जाने के लिए, फिर वो लेगा क्यों। चक्रवर्ती से कहता है आप मेरे सिर को सिर पर रख करके गर्दन को वो नहीं करो, दुखी नहीं करो, ये यहीं रहने दो, जब जब चाहिए मैं ले जाता हूं। तो चक्रवर्ती के यहां छोड़ के जाता है, चक्रवर्ती कहता है यहीं रहता है, तुम कभी भी ले जाओ, यहां सभी उठा के ले जाना चाहते हैं तो तुम तो भी ले जाओ, ले जाकर के कहां रखोगे, ये धरती तो पूरी मेरी ही है, वो यहां नहीं रहेगा मेरे सामने, तुम्हारे सामने रहेगा, तो वहां रहे तो भी मेरा है और यहां रहे तो भी मेरा है, और यहां रहे तो मेरा भी है और तेरा भी है, और वहां रहे तो वो भी मेरा भी है और तेरा भी है। इस प्रकार महान आदर्श विचार चक्रवर्ती के रहते हैं परिग्रह के प्रति। महाव्रतों का हुआ ही निकल, संतोष भाव, संतोष प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। संतोषी प्राणी बनना चाहिए चक्रवर्ती की तरह। चक्रवर्ती किसी को दुखी नहीं करता, दुख को देखते ही उस दुख के उपाय को सोच करके उसको दे देता, दुख को देख नहीं सकता वो। और पहले जो राजयुग था, राजा लोग ऐसे ही होते थे, किसी को दुख नहीं देते थे। अपनी प्रजा में से किसी एक भी समस्या है, एक की भी समस्या है तो वह आ गया तो अपने परिवार का व्यक्ति आ गया, हमारा जॉइंट फैमिली का ही, ऐसा सोचकर आपको क्या दुख है, क्या चाहिए बोलो। और ये ध्यान रखो, तुम जैसे दुखी हो और कोई दुखी है क्या? यदि है तो ढूंढ के लाओ उनको, उसको हम सुखी बनाना चाहते हैं। उसको दुखी तुम भी नहीं देखना, मेरे तक खबर दे देना और उनकी जो दुख के कारण है वो सब पूर्ति करेंगे हम, चिंता मत करो। हालांकि एक राजा सभी से कर वसूल भी करता है, क्यों करता है? राज्य की व्यवस्था के लिए, खुद के पोषण के लिए, खुद को बड़ा बनाने के लिए, खुद को बड़ा परिग्रही सिद्ध करने के लिए, बड़ा धनवान सिद्ध करने के लिए राजा सोचता नहीं है। राजा सोचता है ये जो कर में वसूल करके यहां पर धन लाया गया है, ये धन हमारा नहीं, ये धन प्रजा का ही है और प्रजा की व्यवस्था के लिए हम इसको वो कर रहे हैं। आज ऐसा कहां होता है? वो खुद जितना कमाना है वो कमाने के लिए सोचता है। कर वसूल जो किया जाता जबरदस्ती कर किया जाता है, और कर वसूल को प्रजा के लिए ही उपयोग करे, लोक कल्याण के लिए ही उसका उपयोग करे, ये होता कम है। उसमें से इकट्ठा ज्यादा किया जाता है और काम थोड़ा किया जाता है आज के जमाने में। और ये प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र का शोषण है। लोकतंत्र में तो कोई दुखी ही नहीं रह सकता, ऐसा होना चाहिए। राजतंत्र नहीं चाहिए, लोकतंत्र चाहिए। राजतंत्र को हटा दिया, लोकतंत्र लाए, भारत को स्वतंत्रता मिली, लोकतंत्र आ गया। पर लोकतंत्र राजतंत्र से भी सुखी रखेगा ये ध्येय था लोकतंत्र लाने से पहले। परंतु लोकतंत्र को भारत में लाने के उपरांत भारत उसका उस तंत्र का सदुपयोग ही नहीं कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। हर व्यक्ति मतलब वो हो गया शोषण बुद्धि वाला, चोरी, हड़पना, मांगना, बस उसके बिना काम करके नहीं देना। कहीं किसी क्षेत्र में जाओ वो लंच मांगता है, उसके बिना आपका काम करके नहीं देता वो। क्या बोलते हैं उसको, लंच ही है ना, रिश्वत मांगता,
भोजन नहीं,
रिश्वत में भोजन भी ले लेता है। भोजन भी रिश्वत का साधन बन गया, इतना दरिद्र हो गए। भोजन इतना दे देंगे, हाँ तो फिर एक बार भोजन तो कराओ। ये भी लंच के रूप में, मतलब रिश्वत के रूप में पूछ रहा, शर्त कर रहा है वो। इसलिए पाप युग जो है ना, ये पाप युग, पंचम युग पाप युग इसलिए कहा है। इसमें सबकी बुद्धि परिग्रह परिग्रह, धन 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 धन, इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख इंद्रिय सुख, भौतिक सुख, मैं बड़ा सब मेरे से छोटे, ये जो विचारधारा है ये पाप है, ये भयंकर पाप है। और फिर इस सब की ऐसी विचारधारा बन गई तो सबका एक माहौल बदलता है, फिर मेंटलिटी सबकी एक जैसी होती है, एक जैसे बन जाते हैं। अरे वो तो भ्रष्टाचारी, वो ले रहा है तो मैं इससे ज्यादा लूंगा, वो करता है तो मेरे को क्या, कंपटीशन हो जाता है, भ्रष्टाचारी में कंपटीशन। ये कैसी भूल हो गई। कभी कभी भूल होती है।
इस विधि से तथा श्रद्धा भक्ति तुष्टि विज्ञान अलोप क्षमा और शक्ति सात गुणों से युक्त दाता के द्वारा जो दिया गया है ऐसा हार लेते हैं।
हाँ, नवदा भक्ति तो मुनि के लिए किए जाते हैं, किंतु दाता की भी सात भक्तियां होती हैं। दान देने के लिए दाता के लक्षण सात होना चाहिए, लक्षण दाता के गुण है, ये दाता के सप्त गुण है। दान देने वाले दाता के सात गुण कौन कौन सी,
श्रद्धा भक्ति।
जो दान दिया जा रहा है दान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, दान देने से मेरा कल्याण होता है, पर का उपकार होता है। उदार बुद्धि से, भक्ति बुद्धि से, आदर बुद्धि से जब दान दिया जाए तो उसको श्रद्धा कहते हैं। दान क्रिया के प्रति अत्यंत आसक्ति, श्रद्धा, विनय, भक्ति, ये होना ये श्रद्धा है। दूसरा
भक्ति,
दूसरा गुण है दाता का भक्ति। दान दे रहे हो तो भक्ति के साथ दो, विनय के साथ दो, तो भक्ति उसमें जुड़ गई तो मन एकदम पवित्र रहेगा। भक्ति से मन पवित्र होता है और उस पवित्रता से पाप कर्म आत्मा के धुल जाते हैं भक्ति होने से। और भक्ति ना हो तो मन अपवित्र रहेगा, मन अपवित्र है तो पाप धुलने के बजाय नया पाप और आ जाएगा। इसलिए श्रद्धा के साथ भक्ति को भी जोड़ो, ये कहा है।
तुष्टि,
तुष्टि यानी संतोष वृत्ति। दान दे रहे हैं संतुष्ट होकर के दो, ये देना पड़ रहा है ऐसा नहीं, इच्छा को त्याग करके यानी इच्छा को मार कर दूर करके, अपने मन की इच्छा को दूर करके देंगे तो संतुष्टि रहेगी, संतोष बुद्धि रहेगी, संतुष्ट बुद्धि जिसको बोलते हैं। और वो नहीं रहेगी तो दान तो मजबूरी में देता है तो मुझे देना पड़ रहा है कहता हूं, ये तो देना पड़ रहा है। और कोई दे रहा हो तो वो उसको भी देख करके इसको लगता है क्योंकि असंतुष्ट है ना, ये खुद भी नहीं देना चाहता, और जो दे रहा है संतोष भावना से, अरे ये हमेशा ऐसा ही देता ही रहता है, ये होता है कि नहीं है? ऐसा होता है, कहाँ होता है? और कहीं नहीं होता, यहीं पर होता है। ऐसी बुद्धि, मतलब असंतुष्ट व्यक्ति कभी भी दान दे ही नहीं सकता, वो कंजूस होता है। वो तो दान लेने को तैयार है लेकिन देने को तैयार नहीं हो, ऐसा होता है कंजूस। तो उससे कंजूस बुद्धि, मन की विशुद्धि नहीं रहती, कमाओ कमाओ और ज्यादा रहने दो, देने से कम होता है, आता है क्या, नहीं देना चाहिए, इस प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं आत्मा में, इससे पाप बंद होता है और खुद की संपत्ति घटेगी, खुद का पुण्य घटेगा, पाप बढ़ेगा, और पुण्य घट गया पाप बढ़ गया तो अपनी संपत्ति लक्ष्मी जो छाया की भांति अभी तक चल रही थी वो भी क्षीण हो जाती है, खिसक जाती है।
विज्ञान,
विज्ञान विज्ञान यानी विवेक। दान देते समय किस समय किस मौसम में किस चीज का कितना कैसा किस विधि से दान देना चाहिए, इस संबंधी दान देने की पूरी विधि का अध्ययन करता है।
पात्र देखना पड़ेगा,
पात्र विवेक। हाँ, पात्र को क्या देना क्या नहीं देना ऐसा विचार करके विवेक के साथ देना, ये विज्ञान है। विज्ञान एक गुण होना चाहिए, श्रावक के पास वो गुण है, वो गुण रहता है तो दान देते समय 100 का 100 मार्क्स मिलते हैं। यानी दान देने पर जितना लाभ होना चाहिए आपको वो लाभ आपको होता है। लाभ क्या? कर्म की निर्जरा, पुण्य का बंध, मन की पवित्रता, शांति, परोपकार, ये अच्छी तरह से मतलब शांति के साथ, सुख के साथ, सुविधा के साथ हो जाती है। इसलिए विज्ञान भी चाहिए, ज्ञान, दान देने का ज्ञान। और ज्ञान ना हो तो कुछ भी देंगे, कैसा भी देंगे, विचार नहीं करेंगे। ज्ञान हो तो डर नहीं लगता, इस चीज को ऐसा ही देना जाता है, इतना ही गर्म, इतना ही ठंडा, ऐसा ही बना हुआ, ऐसा ही पका हुआ। ये ज्ञान दाता को देते समय ज्ञान श्रावक को रहता है, इसी का नाम विज्ञान। ये उनका गुण है श्रावक का, श्रावक का ये गुण है, महान गुण है ये। ये विज्ञान गुण सबसे बड़ा है। विज्ञान नहीं है, विज्ञान अगर नहीं है तो दान के प्रति श्रद्धा भी नहीं जगेगी। अज्ञानी है वो, अज्ञानी क्या श्रद्धा करेगा, अज्ञानी क्या भक्ति करेगा, अज्ञानी क्या संतोष धारण करेगा, संतुष्ट बुद्धि धारण करेगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। विज्ञान सबसे बड़ा गुण है। विज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, विवेकपूर्ण ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
अलोभ,
अलोभ, दान देते समय लोभ वृत्ति नहीं रहना चाहिए। लोभ का मतलब यह है कि मैं इस समय दान दे रहा हूं, मुझे बाद में ज्यादा मिलना चाहिए, ये लोभ हुआ। फल मांग रहा है वो, या यूं कहें फल भी नहीं मांगता और देते समय थोड़ा दे रहा है। यानी जितना देना चाहिए दे सकते हैं, शक्ति है, सब है, उतना नहीं दे रहा है। 100 देना था, 5 दे रहा है।
अच्छा,
100 देने की योग्यता है, कितना दे रहा है? 5। तो ये लोग और कोई कोई लोग करते भी हैं और कोई कोई लोग नहीं भी करते। कोई कोई श्रावक ऐसे होते हैं, क्या कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, क्या है मंदिर बनना, क्या है जीर्णोद्धार करना, क्या है शास्त्र छापना, तो वो विचार ही नहीं करते, हाँ इतना ले जाओ। लोभ को जगने ही नहीं देते। और जिनके पास लोभ होता है वो 10 बार सोचता है कितना देना कितना देना, 10 बार सोचता है। और सोचते सोचते पहली बार में जो बुद्धि में आया था कि 50 देना चाहिए, अब ज्यादा विचार करेगा तो 25 पर आएगा, और ज्यादा विचार करेगा वो 5 पर आएगा और 5 देगा उठा करके। ऐसा इसको लोभ कहते हैं।
क्षमा,
क्षमा, क्षमा भाव रहना चाहिए, क्योंकि अन्य दाता भी हैं, अन्य दाता भी हैं, वो भी दान दे रहे हैं और उनकी कोई गलती हो गई, गलती हो गई तो क्रोध नहीं आना, गुस्सा नहीं करना उनके ऊपर, अज्ञान के कारण से, प्रमाद के कारण से कोई अन्य दाता के माध्यम से गलती हो सकती है, तो छोटी मोटी बातों में दाता गुस्सा नहीं करता, दूसरे दाता पर गुस्सा नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, क्षमा भाव, समता भाव धारण करके स्वस्थ रहता है वो, आत्मा की तरफ से अपने ज्ञानोपयोग में स्वस्थ रहता। आप भी देव हम भी देते हैं, आप भी भक्ति से देव हम भी भक्ति से देते हैं, और देते देते कोई गलती हो गई तो गुस्सा नहीं करता, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा करता है, कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है, अब आगे से नहीं करना, इसको क्षमा कहते हैं। क्षमा गुण भी रहना चाहिए।
शक्ति
भी होना चाहिए। दान देने को शक्ति ही नहीं रहेगा तो दान कैसे देगा। तो शक्ति का मतलब ये होता है, दान देने योग्य वस्तु है लेकिन देने की शक्ति, यानी देने की भावना, मनोबल, जितना देना चाहिए उतना मनोबल बढ़ा के तो देना चाहिए, लेकिन मनोबल नहीं बना रहा है वो देने के लिए, तो शक्ति के बिना दान दिया ही नहीं जा सकेगा। बढ़ाओ शक्ति और भाव बढ़ाओ, मतलब शक्ति बढ़ाओ का मतलब भाव बढ़ाओ, देने के लिए तो बहुत कुछ है, उसमें भाव बढ़ा के दे दोगे तो शक्ति का सदुपयोग होगा, और शक्ति को छुपाओगे तो उसमें अंतराकरण का बंद होगा। देने योग्य को नहीं दे रहे हैं तो लोभ वृत्ति है, नहीं देना है तो नहीं देना है तो वो काम नहीं होंगे, काम नहीं होंगे तो अंतराय का कर्म का बंद होगा, लोभ के कारण से अंतराय कर्म का बंद होता रहता है। और पूरा शक्ति लगा करके काम कर रहे हो तो अंतराय कर्म की निर्जरा होती है और परिणाम निषिद्ध होने से पूर्व में बंधे हुए अंतराय कर्म में क्षोभक्षम बढ़ता है, लक्ष्मी बढ़ती है, लाभ बढ़ जाता है, बुद्धि भी पवित्र होती है और देने की शक्ति, देने का बल भी बढ़ जाता है। तो दान में कभी कुछ नहीं सोचना चाहिए, कितना देने योग्य है, जितना देने योग्य है उतना देना है। दूंगा तो कल क्या होगा ऐसा मत सोचना, दान के लिए तो निकाल के ही रखो। देखो कमाई में से 10% दान दिया जाता है, ये नियम है। दान परोपकार के उद्देश्य होता है और दान स्व के कल्याण के लिए होता है। स्व का कल्याण कैसा, अपने पाप कर्मों की निर्जरा करना, अपने अंतराय कर्म के अंदर क्षयोक्षम बढ़ गया तो दान संपत्ति और बढ़ जाती है, तो क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए मन की विशुद्धि बढ़ाता है। मन की विशुद्धि बढ़ी तो अंतराय कर्म में क्षोभक्षम बढ़ेगा और क्षोभक्षम बढ़ेगा तो संपत्ति भी बढ़ेगी, संपत्ति भी बढ़ेगी तो फिर शक्ति भी बढ़ेगी दाने की, देने के लिए और ज्यादा दे दूं इस प्रकार शक्ति भी बढ़ेगी। इस प्रकार ये एक संतोष गुण और एक विज्ञान, ये दो गुण अगर आ गए तो सारे शेष गुण जो मतलब पांच हैं, विज्ञान और संतोष, विज्ञान गुण और संतोष गुण, ये दोनों दाता में प्रधान गुण है। संतोष गुण होने से वह देने में और लेने में विचार नहीं करता, मुक्त हस्त से दान देता है, जितना चाहिए तुरंत दे देता है। और विज्ञान का अर्थ ये भी है, विज्ञान मतलब कहां देना चाहिए और कहां नहीं देना चाहिए, कहां मेरा धन का सदुपयोग होता है और कहां मेरा धन का सदुपयोग नहीं होता, उसका भी विचार करता है। ऐसा नहीं कि वो मांगने वाला आ गया और दान का कर ये लो, फिर उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। वो दुरुपयोग अगर हो गया तो आपको अविवेक के साथ देने के कारण उसका पाप का भागीदार भी आप ही रहेंगे। आपका धन लेकर के कोई व्यसनी बना, आपके धन को लेकर के जहां लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाया और वह दूसरी जगह गलत जगह लग गया, पाप में लगा दिया, तो इसका पाप कर्म का बंध किसको होगा।
हमको विवेक नहीं किया इसलिए,
जिसको विवेक नहीं था देने वाले को उनको भी होगा। और उस दान वस्तु को दुरुपयोग किया जिसने लिया तो उनको भी कर्म का बंध होगा। तो दोनों ही अविवेक के कारण से, विज्ञान गुण न होने से, दोनों ही घाटे में चले जाते हैं, देने वाले भी और लेने वाले भी घाटे में जाएंगे। सब बातों की भगवान ने चर्चा की है, एक भी बात नहीं छोड़ी। जो मेन मेन पॉइंट है सब दिया है, इसके आधार से चिंतन करो और आगे बढ़ो, ये कहा। जिनवाणी
पूजनीय महाराज की जय, मुनि संघ की जय।